नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। जस्टिन हेल्पर्न की शिट माई डैड सेज एक हास्य संस्मरण है जो उनके बेहद लोकप्रिय सोशल मीडिया खाते से विकसित हुआ। पुस्तक का केंद्र हेल्पर्न के पिता सैम है, एक सेवानिवृत्त रेडियोलॉजिस्ट जिनकी भाषा तीखी, अशिष्ट, सीधे निशाने पर लगने वाली और अक्सर असाधारण रूप से मजेदार है। प्रेम संबंध टूटने के बाद 28 वर्षीय हेल्पर्न जब कैलिफोर्निया में अपने माता पिता के घर लौटते हैं, तब रोजमर्रा की बातचीत, पुरानी पारिवारिक स्मृतियां और पिता की प्रतिक्रियाएं इस किताब का ढांचा बनती है। यह पारंपरिक क्रमबद्ध आत्मकथा नहीं है। छोटे प्रसंगों और कथनों के माध्यम से यह पिता पुत्र के रिश्ते, वयस्क होने की अधूरी प्रक्रिया और पीढ़ियों के अलग संवाद ढंग को सामने लाती है। इसका उद्देश्य जीवन का व्यवस्थित दर्शन देना नहीं, बल्कि कठोर दिखने वाली ईमानदारी के भीतर मौजूद देखभाल को हास्य के साथ पकड़ना है। पुस्तक की प्रभावशीलता इसी विरोधाभास में है, जहां अपमान जैसा सुनाई देने वाला वाक्य भी कभी कभी जिम्मेदारी, आत्मनिर्भरता या प्रेम का असुविधाजनक रूप बन जाता है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, सोशल मीडिया के छोटे कथनों को पारिवारिक संस्मरण में बदलने की कला। पुस्तक की शुरुआत एक ऐसे विचार से हुई जो डिजिटल माध्यम के लिए स्वाभाविक था, पिता के बोले हुए तीखे वाक्यों को दर्ज करना। लेकिन किताब केवल कथनों की सूची नहीं बनती। हेल्पर्न उन्हें बचपन से वयस्कता तक फैले छोटे प्रसंगों के साथ रखते हैं, जिससे पाठक समझ सके कि किसी टिप्पणी का संदर्भ क्या था और वह पिता पुत्र के संबंध में कैसे काम करती थी। इस संरचना का लाभ गति है, पाठक को लंबे कथानक की तैयारी के बिना हास्य मिलता है, फिर उसी के पीछे परिवार का इतिहास दिखाई देता है। साथ ही यह रूप सीमा भी बनाता है। हर प्रसंग को संक्षिप्त और प्रभावी होना पड़ता है, इसलिए संबंध की जटिलता हमेशा समान गहराई से नहीं खुलती। फिर भी सोशल मीडिया की तात्कालिकता और संस्मरण की आत्मीयता का मेल पुस्तक की खास उपलब्धि है। हेल्पर्न यह दिखाते हैं कि निजी जीवन की साधारण बातचीत भी सही संदर्भ मिलने पर व्यापक अनुभव बन सकती है। पाठक पिता की भाषा पर हंसता है, पर साथ ही यह भी देखता है कि बेटे ने अपने अनुभव को सार्वजनिक करने के लिए चयन, संपादन और कथा विन्यास का सहारा लिया है। इसलिए पुस्तक इंटरनेट प्रसिद्धि का केवल मुद्रित संस्करण नहीं, बल्कि उस सामग्री का पारिवारिक अर्थ निकालने का प्रयास है। दूसरा, सैम हेल्पर्न की कठोर भाषा में छिपा व्यावहारिक स्नेह। सैम हेल्पर्न पुस्तक के सबसे यादगार व्यक्तित्व है, क्योंकि वे स्नेह को कोमल शब्दों में व्यक्त करने वाले पिता नहीं है। उनका तरीका डांटना, गलत तर्क को तुरंत काटना और बेटे को उसकी कमजोरियों के लिए जवाबदेह ठहराना है। उनकी टिप्पणियां अक्सर अश्लीलता और अतिशयोक्ति से भरी हैं, इसलिए उन्हें सीधे जीवन सलाह मानना गलत होगा। उनका महत्व उस पारिवारिक संदर्भ में है, जहां कठोरता के बावजूद निरंतर उपस्थिति और चिंता मौजूद है। हेल्पर्न के वर्णन से पता चलता है कि पिता बेटे की असफलताओं, संबंधों और निर्णयों पर प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि वे उससे दूरी नहीं बना रहे। पुस्तक इस अंतर को उपयोगी ढंग से सामने रखती है कि भावनात्मक गर्माहट और प्रेम की अभिव्यक्ति एक ही चीज नहीं है। कुछ परिवारों में देखभाल सहायता, अनुशासन और साफ बोलने के रूप में दिखती है। हालांकि किताब इस शैली को आदर्श नहीं ठहराती। पिता की असभ्यता हर पाठक को स्वीकार्य या मनोरंजक नहीं लगेगी। इसका अधिक संतुलित पाठ यह है कि हेल्पर्न अपने पिता को सुधारने योग्य नैतिक आदर्श के रूप में नहीं, बल्कि विरोधाभासों वाले व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसी कारण हास्य के पीछे संबंध का विश्वसनीय तनाव बना रहता है। तीसरा, वयस्क बेटे का घर लौटना और अधूरी स्वतंत्रता का तनाव। प्रेम संबंध समाप्त होने के बाद हेल्पर्न का माता पिता के घर लौटना कहानी की मुख्य परिस्थिति है। यह स्थिति केवल हास्य पैदा करने का साधन नहीं, बल्कि वयस्कता के बारे में पुस्तक का महत्वपूर्ण आधार है। आर्थिक या भावनात्मक झटके के बाद घर लौटने वाला व्यक्ति कानूनी रूप से वयस्क हो सकता है, लेकिन परिवार की पुरानी भूमिकाएं तुरंत वापस आ जाती हैं। बेटा फिर से सलाह, आलोचना और घरेलू नियमों के घेरे में होता है। पिता के लिए भी यह बदलाव सरल नहीं है, क्योंकि उन्हें स्वतंत्र हो चुके बेटे की अस्थिरता अपने घर में दिखाई देती है। हेल्पर्न इस असहजता को गंभीर आत्मस्वीकृति की जगह हास्यपूर्ण घटनाओं से व्यक्त करते हैं। परिणाम यह है कि पाठक असफलता को केवल शर्म या निजी कमी के रूप में नहीं देखता। जीवन के संक्रमण, जैसे नौकरी की अनिश्चितता, ब्रेकअप या रहने की व्यवस्था बदलना, अक्सर परिवार के साथ नए सिरे से बातचीत मांगते हैं। पुस्तक का व्यावहारिक संकेत यह नहीं कि हर व्यक्ति को कठोर सलाह सहनी चाहिए, बल्कि यह है कि निर्भरता की अस्थायी स्थिति में सीमाएं, जिम्मेदारी और आत्मसम्मान का प्रश्न अधिक स्पष्ट हो जाता है। पिता की बेधड़क टिप्पणियां हेल्पर्न को इसी वास्तविकता से बचने नहीं देती और यही तनाव पुस्तक को केवल चुटकुलों के संग्रह से अधिक बनाता है। चौथा, पीढ़ियों के बीच ईमानदारी, मर्यादा और संवाद की अलग परिभाषाएं। शिट माई डैड सेज में हास्य का बड़ा स्रोत भाषा का पीढ़ीगत अंतर है। हेल्पन की पीढ़ी निजी भावनाओं, सामाजिक शिष्टाचार और आत्म प्रस्तुति को अपेक्षाकृत अधिक सावधानी से संभालती दिखाई देती है। इसके विपरीत सैम की शैली तत्काल निर्णय, कच्चे शब्दों और बिना नरमी वाले निष्कर्षों की है। पुस्तक किसी एक शैली को विजेता घोषित नहीं करती, लेकिन यह जरूर दिखाती है कि स्पष्टवादिता और असंवेदनशीलता के बीच की रेखा कितनी पतली है। पिता की कई बातें इसलिए असरदार लगती हैं कि वे दिखावे, आत्मदया या बेतुके सामाजिक व्यवहार को पहचान लेती हैं। दूसरी ओर वही शैली चोट पहुंचा सकती है, क्योंकि हर सच को कहने का तरीका और समय मायने रखता है। यह द्वंद्व पाठक के लिए उपयोगी है। वह अपने परिवार के संवाद को देख सकता है कि क्या वहां ईमानदारी समस्या सुलझाती है या केवल शक्ति दिखाने का माध्यम बनती है। हेल्पन पिता के कथनों को अक्सर संदर्भ देकर प्रस्तुत करते हैं, जिससे उनके पीछे की नाराजगी, चिंता या हास्यास्पद गलतफहमी समझ में आती है। इसीलिए पुस्तक की भाषा को नकल करने की चीज नहीं समझना चाहिए। इसका मूल्य इस अवलोकन में है कि लोक प्रेम, नियंत्रण, निराशा और अपेक्षा को अलग सांस्कृतिक भाषाओं में व्यक्त करते हैं। अंत में, हास्य की शक्ति और एक दोहराव वाले प्रारूप की सीमाएं, यह किताब मुख्यतः पाठक को हंसाने के लिए लिखी गई है और इसकी सफलता एक विशिष्ट आवाज पर निर्भर करती है। सैम की अप्रत्याशित प्रतिक्रियाएं, हेल्पन की आत्मव्यंग्यपूर्ण स्थिति और छोटे प्रसंगों का तेज क्रम पढ़ने को हल्का बनाते हैं। हास्य यहाँ कठिन पारिवारिक क्षणों को सहने योग्य दूरी देता है। पाठक किसी झगड़े या असफलता को केवल दुखद घटना की तरह नहीं, बल्कि मनुष्य की विचित्रता के रूप में भी देख पाता है। यही कारण है कि पुस्तक उन लोगों को भी आकर्षित करती है जो अपने परिवार में अनगढ़, अनकहे या असामान्य स्नेह को पहचानते हैं। फिर भी इसकी सीमाएं स्पष्ट हैं। कथनों और लघु घटनाओं पर आधारित संरचना में कुछ चुटकुले और भाव बार बार लौटते महसूस हो सकते हैं। अश्लील भाषा पुस्तक की पहचान है, पर वही उन पाठकों के लिए बाधा बन सकती है जो हास्य में कम आक्रामक स्वर चाहते हैं। संस्मरण की अपेक्षा से पढ़ने वाले कुछ लोग अधिक आत्मचिंतन, विस्तृत चरित्र विकास या निरंतर कथानक चाहेंगे। इसलिए सबसे अच्छा पाठन तरीका इसे गंभीर पारिवारिक मनोविज्ञान की किताब मानना नहीं, बल्कि तेज, असमान लेकिन कभी कभी भावपूर्ण हास्य संस्मरण समझना है। इसकी ईमानदार सीमा ही इसकी ताकत को स्पष्ट करती है। यह एक परिवार की आवाज है, सार्वभौमिक समाधान नहीं। निष्कर्ष में, शिट माई डैड सेज उन वयस्क पाठकों के लिए उपयुक्त है जिन्हें छोटे, तेज और बेबाक हास्य संस्मरण पसंद है। विशेष रूप से वे पाठक इससे जुड़ सकते हैं जिन्होंने माता पिता के साथ प्रेम और आलोचना का मिला जुला रिश्ता देखा है या जीवन के किसी संक्रमण में फिर से परिवार पर निर्भर होना पड़ा है। इसे पढ़ने का व्यावहारिक लाभ कोई नियमावली पाना नहीं है। इसके बजाय ये पाठक को पारिवारिक भाषा के पीछे छिपी अपेक्षाओं, देखभाल और शक्ति संबंधों को पहचानने का अवसर देता है। कुछ लोगों के लिए यह याद दिला सकती है कि स्नेह हमेशा विनम्र वाक्यों में नहीं आता। हालांकि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि कठोरता को स्वतः प्रेम का प्रमाण न माना जाए। पुस्तक की बौद्धिक रुचि इसके माध्यम में भी है। एक वायरल सोशल मीडिया खाते को हेल्पन ने संदर्भयुक्त संस्मरण में बदला, जहां अलग अलग चुटकुले मिलकर पिता पुत्र के संबंध का चित्र बनाते हैं। पारंपरिक हास्य आत्मकथाओं की तुलना में इसका कथानक कम विस्तृत और अधिक खंडित है, लेकिन यही खंडितता इसकी लय बनाती है। सैम हेल्पन की अनफिल्टर्ड आवाज, बेटे की आत्मव्यंग्यपूर्ण दृष्टि और घर लौटने की परिचित परिस्थिति इसे अलग पहचान देती है। जो पाठक गाली गलौज, दोहराव और सीमित गहराई से असहज हैं, उनके लिए यह उपयुक्त नहीं हो सकती। लेकिन सही पाठक के लिए यह एक विशिष्ट, तेज और मानवीय हास्य पुस्तक है, जिसमें हंसी के साथ पारिवारिक निकटता की असुविधा भी दर्ज है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जस्टिन हेल्पन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।